हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 9। ये श्लोक श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का। ये मुक्ति का सूत्र है, कैसे हम अपने जन्म मृत्यु के चक्र को बड़ी आसानी से रोक सकते हैं, इस श्लोक के द्वारा हम समझते हैं। आइए श्लोक को देखते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर भगवान के विषय में ये समझता है व्यक्ति कि उनके जन्म कर्म दिव्य हैं, तो कभी इस जगत में नहीं आएगा। तो अपना पूरा जीवन वस्तुतः हमको इसी कार्य में लगाना चाहिए, इसी के लिए मानव जीवन मिला है, ताकि हम भगवान के दिव्य कर्मों के बारे में सुने, दिव्य जन्म के बारे में सुने और उनकी शाश्वतता को समझ करके उनके धाम की प्राप्ति कर ले। और कोई अधिक तपस्या करने की हमको आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में अभी हम तात्पर्य पढ़ते समय चर्चा करेंगे। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। आरुह्य कृच्छे न परम पदम ततः पदन्ति नादृत युष्मात् पदांग्रह। देवतागण भगवान की स्तुति करते हुए श्रीमद् भागवत में इसी बात को बोलते हैं कि इस परम पद, उस ब्रह्म के पद, इस ब्रह्म सायुज्य जो भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज है, उसमें जाके लीन होने वाली जो मुक्ति है, जिसे सायुज्य कहा जाता है, उसको कई कई जन्मों की तपस्या के द्वारा प्राप्त करते हैं निर्विशेषवादी जन। इस बात को भगवान गीता में भी बोलते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही कथिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। कि जिन लोगों का मन निर्विशेष में बहुत आसक्त है, उनके लिए प्रगति बहुत मुश्किल होती है। लेकिन इसके विपरीत हम यहां देख रहे हैं, भगवान के भक्त केवल निर्विशेष ज्योति में नहीं जाते, अपितु भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। किस प्रकार से? केवल भगवान की लीलाओं को ही दिव्यता को समझने के लिए के द्वारा। तत्व में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि तत्व दिव्य का अर्थ क्या है और तत्वता का अर्थ क्या है। यह हम कह सकते हैं कि थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो भगवान के यहाँ पे आने का एक और कारण है कि जो भगवान आते हैं, जो लीला करते हैं, उनको शास्त्रों में रखा जाता है और उन शास्त्रों को सुन करके अन्य जीवात्माएं जो बाद में आती हैं, भगवान की भक्ति करती हैं, वो भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से सुन करके भी भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाए। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री श्रीला सारार्थवर्षिणी टीका में बताते हैं, कहते हैं दिव्य का अर्थ श्रीपाद रामानुजाचार्य और मधुसूदन सरस्वती जी करते हैं कि दिव्य का अर्थ है जो भौतिक नहीं है परंतु स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दिव्य का अर्थ है असामान्य, अलौकिक। तो क्योंकि ये भौतिक जगत से संबंधित नहीं है, इस कारण से आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक होने के कारण ये गुणों के परे है और शाश्वत है। भगवान के जन्म कर्म गुणों के परे हैं और शाश्वत हैं। जीव गोस्वामी भी इस बात को भागवतम के एक श्लोक जो कि भागवत संदर्भ में कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का कोई भौतिक जन्म और क्रिया नहीं होता। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में आता है ये, ना विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमायया तानि अनुकलामृच्छति। भगवान के ना तो कोई भौतिक जन्म है, न क्रियाएं हैं, न नाम है, न रूप है, न गुण है, न कोई दोष है। इस जगत की सृष्टि और संहार करने के लिए, ये जो कह सकते हैं इस जगत की सृष्टि और संहार जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, इसका उसके लिए भगवान श्री राम और कृष्ण के रूप में आते हैं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा। उनकी अंतरंग शक्ति अत्यधिक है, असीमित है और विभिन्न रूप में आकर के वो अद्भुत कार्य करते हैं जो पूरी तरह से भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है। वो परब्रह्म है, इस कारण से मैं उनकी उनकी नमस्कार करता हूं। दिव्य का अर्थ ये भी है कि तर्क के द्वारा उसको हम समझ नहीं सकते, अचिंत्य है। श्रुति स्मृति के आधार पर श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को बोलते हैं। पुरुष बोधिनी श्रुति में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी भक्त हृदय अंतरात्मा। इस बात को प्रभुपाद जी भी कोट करेंगे, तो हम वापस प्रभुपाद जी के तत्पर में आते हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान हैं, यानी वो सभी रूप जो हैं भगवान से भिन्न हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए, यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। तो आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के इस प्रकार से पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को एकदम से सट करके ही अपने तात्पर्य को लिखे हैं। तो इस तथ्य को कैसे समझाया जाए कि भगवान के जो विभिन्न रूप हैं वो भगवान से अभिन्न हैं? श्रद्धा के द्वारा, क्योंकि शास्त्र इस बात को बोलते हैं, इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए। एक भक्त बोल रहे थे कि भक्तों के लिए ये समझना कि भगवान के जो विभिन्न विस्तार हैं वो भगवान से अलग हैं, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है समझना कि ये वो भगवान से अभिन्न हैं, वो भगवान का ही रूप है। तो खैर, एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी कि अपने मनोधर्म से, मन की उहपोह के द्वारा, मन के रथ को दौड़ाए बिना, जो केवल श्रद्धा से इस बात को शास्त्र का प्रमाण सुन करके स्वीकार कर लेता है, तो वो मुक्ति की चरम सिद्धि यानी कि भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। अब ये बात भी हमको श्रद्धा से स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति कहे ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसमें श्रद्धा का भाव है और फिर वो नहीं, भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस बात को भगवान आगे भी गीता में बताएंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा के माध्यम से भक्तों के मुख से सुन करके हमें समझना चाहिए कि भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए हमें केवल यही श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो सब दिव्य हैं, अप्राकृत हैं, शाश्वत हैं, चिन्मय हैं, प्रकृति के परे हैं। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्त्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है, वह उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है, फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संकृति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है, इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी श्रील विश्वनाथ ठाकुर की कमेंट्री से ही इस बात को ले रहे हैं। भगवान की शाश्वतता को समझने के लिए भागवत में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। और यहाँ पे एक श्रील विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, यो वेति तत्वता का अर्थ क्या है, जो समझता है कि भगवान के जन्म और कर्म सच्चाई में शाश्वत हैं, सच में शाश्वत हैं, इस आधार पर कि भगवान ने स्वयं बोला है भगवद गीता में अजोपि सन अव्यात्मा, बावजूद उसके कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी अपने अव्यय यानी कि कभी भी नष्ट ना होने वाले शरीर में वो प्रकट होते हैं और उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। और उनके जो जन्म कर्म हैं वो केवल दिव्य लगते नहीं हैं या केवल शाश्वत लगते नहीं हैं किसी माया के द्वारा, बल्कि शाश्वत हैं। तो इस प्रकार से तत्व में हम जब शास्त्र के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा स्वीकार कर लेते हैं तो इसी का अर्थ होता है तत्व में समझना। ये मेरे मन में हमेशा चलता रहता था कि तत्व में समझने का अर्थ क्या है। इसका अर्थ यही है कि श्रद्धा से शास्त्रों के वचनों को सुने। यहाँ पे योवेति तत्वतः का अर्थ ये भी हो सकता है, आचार्य बताते हैं कि भगवान को साक्षात ब्रह्म का रूप समझना, भगवान का रूप जो है साक्षात स्पिरिचुअल ब्रह्म है ये समझना। और इसी बात को प्रभुपाद कोट करते हैं, क्षमा कीजिएगा, कृष्ण भगवान बोलते हैं ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस त्रिविद स्मृतः। जो तीन शब्द हैं ओम तत्सत, ये ब्रह्म को इंगित करते हैं। तो तत्व में समझने का अर्थ है ब्रह्म की स्थिति, यानी कि जो समझता है कि भगवान का जो स्वरूप है वो साक्षात पर ब्रह्म है, वो व्यक्ति भी तत्व में भगवान को समझता है, ऐसा व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा। और त्यक्त्वाम देहा का देहम, त्यक्त्वा देहम का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करने के बाद ही भगवान की प्राप्ति करेगा, अपितु जन्म जीते जागते समय भी जीवित अवस्था में भी भगवान की वो प्राप्ति कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तमेव विद्वत्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते य अन्याय श्री विद्यते य नाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है, इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि व्यक्ति, ये श्रील प्रभुपाद जी श्वेता शतर उपनिषद से कोटेशन दे रहे हैं कि अगर व्यक्ति सोचे कि भगवान की भक्ति के अलावा मैं किसी और तरह से मुक्ति प्राप्त कर लूं, उनके धाम की प्राप्ति कर लूं, तो वह संभव नहीं, वह असंभव है। और भगवान के गुणों को समझने का एकमात्र तरीका है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भगवद्गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों को सुनते हैं, तो फिर धीरे धीरे भगवान की बातें समझ में आने लगती हैं। तो ये भक्ति का मार्ग है, और जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता है इस प्रकार से, तो फिर वो भगवान के धाम जाने का योग्य नहीं बनता। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवद्गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात यहाँ बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति, अगर व्यक्ति ये स्वीकार ना करे कि कृष्ण भगवान है, और भगवद्गीता को स्वीकार करे भी लेकिन ये नहीं स्वीकार करे कि वह कृष्ण भगवान है, तो उसने भगवद्गीता रूपी अमृत की जो बोतल है उसका ढक्कन नहीं खोला है, तो केवल बाहर से चाट रहा है। तो भले ही ऐसा लगे कि वो बहुत मर्मज्ञ है भगवद्गीता का, लेकिन वो वस्तुतः भगवद्गीता के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। तो बहुत से लोग भगवद्गीता का व्यापार करते हैं, भगवद्गीता के वचनों को कोट भी करते हैं, लेकिन उनका भगवान कृष्ण के ऊपर कोई विश्वास नहीं होता भगवान के रूप में। जैसे कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि हम भगवद्गीता के केवल तीसरे अध्याय या दूसरे अध्याय तक स्वीकार करते हैं, आगे स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की मनोवृत्ति एक शुद्ध भक्त की नहीं होती। भगवद्गीता के सभी वचनों की वो पूजा करते हैं, उसको हृदय से स्वीकार करते हैं, और इसी कारण से भगवद्गीता के अमृत को वो चख पाते हैं। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। यानी भौतिक जगत में लोग उनको महात्मा, साधु या और कोई उच्च पदवी दे देते हैं, लेकिन जगत के लोगों के द्वारा कुछ प्रशंसा प्राप्त करने से लाभ क्या होगा? क्या मैं जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाऊंगा? ये व्यक्ति को विचार करना चाहिए, और आप उत्तर जानते हैं, नहीं छूट पाऊंगा। इसलिए बेहतर है कि भगवान को प्रसन्न करने की भाव मनोवृत्ति रखें। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्यों? अहेतु की कृपा का अर्थ ये है कि जब हम भगवान के भक्तों से सुनते हैं, तब हमको समझ में आएगा भगवान की वास्तविक स्थिति क्या है। नहीं तो अपने मनगढ़ंत तरीके से जब हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, भले ही हम संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी क्यों ना हों, हम भगवान के बारे में ठीक से नहीं समझ सकते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, भागवत पढ़ो गया तुम्हें भागवत स्थाने। अगर तुम भागवत को समझना चाहते हो तो एक भक्त के शरण में जाकर के भागवत को पढ़िए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी की तात्पर्यों के पहले भी बहुत सारे लोगों ने, जो कि भक्त नहीं थे, भगवत गीता के ऊपर कुछ टीका लिखने का प्रयास किया, लेकिन उनकी टीका को पढ़ करके कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बना, भगवान के शरणागत नहीं हुआ, जिसका जो कि अंतिम कह सकते हैं उपदेश है भगवत गीता का भगवान के द्वारा। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। बहुत सुंदर बात है, श्रद्धा केवल अंध नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ साथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए। विभिन्न दृष्टिकोणों से हमें भगवान के बारे में सुनने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान के जो कर्म और जन्म और कर्म है वो दिव्य हैं, और इसके द्वारा व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन पाएगा, भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन सकेगा। हरे कृष्णा।